તારીખ 14/9/1983 શ્રી સમયસર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 1
कोई बढ़िया सत्य नहीं है। जो परिणाम अपने आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा के आधार से उत्पन्न होता है, और जैसा सत्स्वरूप है सदृश भाव से उत्पन्न होता है, वो धर्म का भाव है, उसमें सत्यता है, सत्पणा है, सत का स्वीकार है, सत का वेदन है, का अनुभव है, इसलिए इस धर्म को सत्य धर्म कहने में आया है, उत्तम सत्य धर्म कहने में आया है। लौकिक में सत्य शब्द का जो रूढ़ी अर्थ है, प्रचलित अर्थ है, वो तो इतनी सीमा में है कि जो सच्चा बोलता है उसको सत्य वचन कहते हैं और जो झूठ बोलता है उसको असत्य वचन कहते हैं। सत्य के विषय में प्राय वचन प्रयोग का ही संदर्भ लिया जाता है, लेकिन ये भी बहुत सीमित बात है। शास्त्र में तो ऐसी बात भी आती है, क्योंकि नई दीक्षा और इसके कथन जो है वो बड़े उपटांग हैं। एक दृष्टांत आता है कि एक कसाई जो है गाय को, कसाई जो काटने वाला होता है स्लॉटर, वो गाय के पीछे पड़ा हुआ था। गाय भगई थी, वो गली कूची में कहीं ऐसे चली गई तो उसको दिखने में नहीं आया। फिर कोई आदमी मिल गया, आदमी धनी था, उसको पता चल गया कि गाय मारी मारी सी जा रही थी, तो उसको ढूंढता है मारने के लिए, तो पता चल गया। उसने पूछा कि गौवा इधर भाग रही थी, किस गली में गई? तो उसने सही बात नहीं बताई, उसने गलत बात बताई। तो वो जो गली में गई थी वो नहीं बताई, दूसरी गली बता दी कि उधर गई है। उसको असत्य बोलने का पाप लगा कि नहीं, प्रश्न है। वो असत्य बोला तो वहां पर असत्य बोलने का उसको पाप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर उस असत्य बोलने के काल में जो उसको परिणाम हुआ, या तो ये पाप का होता या तो पुण्य का होता, दो में से एक होता। तो इनको पाप का भाव हुआ है कि पुण्य का हुआ है? कि असत्य बोलने पर भी उनको पुण्य भाव हुआ है। अब ऐसी जो उत्पटांग बातें हैं उसका निर्णय कैसे करेंगे? तो निर्णय तो ऐसा करना है हमें सत्य के विषय में कि अपना जो त्रिकाल सत्स्वरूप है वही सत्य है, हमारे लिए प्रयोजन का विषय एक ही सत्य है। ये मूलभूत सत्य है, सत्य स्वरूप है, सत्स्वरूप है वही सत्य स्वरूप है, वही मूलभूत सत्य है। और इसके बाद जो इसके आधार से उत्पन्न होने वाला परिणाम है उसी को सत्य धर्म कहते हैं, या ये धर्म का ये सत्य अंग है। अंग कहो लक्षण कहो एक ही बात है। ऐसा उत्तम सत्य धर्म है वो वितराग भाव स्वरूप है। वितराग भाव का ही दूसरा नाम है और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ ही वो रहता है। कभी मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ धर्म नहीं रहता, सत्य धर्म रहने का कोई सवाल ही नहीं है। ये आज के विषय में थोड़ा सा चालू अधिकार है भेद ज्ञान का। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म की प्राप्ति कैसे हो, किस विधि से हो, इस विधि का विषय यहाँ चलता है। तो विधि का विषय में एक ही विधि है तीनों काल में। कालांतर में धर्म की विधि में कोई फर्क होता नहीं, कोई दूसरी विधि से धर्म का कार्य होता नहीं। भले ही जैन दर्शन में अनेक संप्रदाय हो गए हों, लेकिन जैन धर्म में कोई फर्क हुआ हो ऐसा नहीं हुआ है। अपने दोष को पोषण करने के लिए या दोष का बचाव करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि काल क्रम के अनुसार धर्म में भी काल के अनुसार कोई फेरफार करनी चाहिए। और यही प्रैक्टिकल होना जरूरी है। सिद्धांत से अड़े रहना और कालांतर में कुछ फेरफार नहीं करना वो इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा कहते हैं। हर काम में ऐसा कहा जाता ना कि जो काम जैसे निकाला जाए वैसे कर लो, यही प्रैक्टिकलिटी है इसकी। तो धर्म के विषय में ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि भैया इस लाइन में तो ऐसा नहीं चलता है। ये धर्म है कोई काम निकालने की चीज नहीं है, कोई टेम्पररी काम निकालने की चीज नहीं है। ये तो एक वस्तु का स्वभाव है जिसका संबंध वस्तु के विज्ञान के साथ रहता है, वस्तु के स्वरूप के साथ रहता है। इससे अपनी कल्पना करके किंचित मात्र भी विधि में फेरफार का स्वीकार करना या विधि का फेरफार को अंगीकार करना ये अनंत तीर्थंकरों के मार्ग पर इसकी आज्ञा पर पैर रखने के बराबर है, इसकी आज्ञा को तोड़ते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने सत्पुरुषों ने हमेशा ये बात कही है कि धर्म तो तीनों काल में एक ही होता है। एक होय तृण काल मां परमा रत्नो अन्य, श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि में गाया। भले ही प्रसिद्ध रूप से वो दिगंबर संप्रदाय में आए हुए नहीं थे, माने गए भी नहीं, लेकिन उसने जो कहा है वो तो परम सत्य को ही कहा है। इनके व्यक्तित्व के विषय में असमंजसता रहा है अभी भी, क्योंकि बहुत से श्वेतांबर लोग भी उनको स्वीकारते हैं, भले ही समझ से स्वीकारते हैं या बे समझ से स्वीकारते हैं दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने जो अपूर्व अवसर की रचना की है, गाया है, उसमें तो स्पष्ट निर्देश किया है। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध, जो ऐसा करके लिखा है। मैंने जिस दशा की भावना जिस मुनि दशा की भावना गृहस्थ अवस्था में उन्होंने की है उसमें तो नग्न भाव का प्रसिद्धपणा है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन वर्तमान पुण्य के अनुसार और उनके परिचय में आए हुए लोगों को स्थितिकरण के लिए उन्होंने इस बात को मर्यादित रूप में कही। यहाँ तो ये विषय चलता है कि अनादि अनंत धर्म की प्राप्ति की जो विधि है वो एक भेद विज्ञान ही है, और वह भेद विज्ञान अपनी अवस्था से शुरू होता है और अपनी अवस्था में भी एक आत्मभाव है, एक अन्य भाव है। क्या है कि एक मैं ऐसा जिसमें अनुभव आता है, ऐसा एक आत्मभाव है, और इससे अतिरिक्त जितने भी जो भी भाव है वे सब अन्य भाव है। ऐसा अपने आत्मभाव में अहमपणा का भेदन करना वो भेद ज्ञान का स्वरूप है। कुछ गुरुदेव ने तो ऐसा लिया है, इस विषय में एक बोर है वो 733 नंबर का बोर है कि जीव के परिणाम में जो पर पदार्थ वृत्ति की वृत्ति है उसमें शुभ हो या अशुभ हो वो दो ही प्रकार की होती है, उसमें तीसरा भेद नहीं है। पर पदार्थ प्रति की वृत्ति शुभ हो या अशुभ हो वो आत्मा नहीं, ऐसा कहा है। कहना ये चाहते हैं कि ये अन्य भाव स्वरूप है, आत्मभाव स्वरूप नहीं है, इसलिए वो अन्य भाव में इसने डाला है, वो आत्मा नहीं। और स्वरूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान वही आत्मा है, इतना कहा है। ज्ञान आत्मा है इतना नहीं न कह करके स्वरूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कहा। वेदन लेना है कि जो ज्ञान वेदन में अनुभव है, अनुभव तो ज्ञान में ही होता है, और ज्ञान में सिवा ज्ञान किसी का अनुभव आना असंभवित है, अशक्य है। ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव रहता है, ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन रहता है, ज्ञान में अन्य भाव का, अन्य पदार्थ का प्रवेश नहीं, स्पर्श नहीं, इसलिए इसका अनुभव भी नहीं। ऐसा ज्ञान स्वरूप से अनुभव में आना, ज्ञान को स्वरूप से अनुभव में लेना वो आत्मा का अनुभव है, क्योंकि आगे वो कह चुके हैं 13 नंबर के कलश में, वो कह चुके हैं जो 15 गाथा के पहले पहले हैं, वो अधिकार चालू ही है यहाँ 17-18 में कि ज्ञानानुभूति है वो आत्मानुभूति है, और आत्मानुभूति है वो ज्ञानानुभूति है, ऐसा वो आगे क्या है। ऐसे ज्ञान का स्वसंवेदन की कला, ये स्वसंवेदन शब्द जो है उसको अच्छी तरह समझना जरूरी है कि ज्ञान है उसमें स्व है, स्वपना अपनापना अपनत्व जो है वो तो ज्ञान में है, और वेदन है वो भी ज्ञान में है, और वो वेदन सम्यक प्रकार से, ये वेदन उग्र प्रकार से, अच्छे प्रकार से, ठीक प्रकार से उभर के आना, उसको संवेदन कहते हैं। वेदन और संवेदन, जिसमें तीव्र वेदन हो उसको संवेदन कहते हैं। ज्ञान में अपने का स्वाभिमुख होते ही अच्छी तरह वेदन आना, सम्यक प्रकार से वेदन आना, उग्र रूप से वेदन आना, और अन्य ज्ञान में झलकते हुए भी उसके प्रति लक्ष्य नहीं जाके वेदन भी नहीं आना, गौण हो जाना इतने हद से कि जैसे वेदन आता ही नहीं हो, उसको स्वसंवेदन कहते हैं। ऐसा ज्ञान का जो स्वसंवेदन है, ये स्वसंवेदन की एक कला है। कला इसलिए उसको कही कि ये जोर जुलम से होने वाली बात नहीं है, ये हठ से जिद से होने वाली बात नहीं है, इसलिए उसे कला कहने में आई है। ऐसे ज्ञान के स्वसंवेदन की कला है, वही मोक्ष की कला है, उसे ही मोक्ष कला कहने में आई है। स्वसंवेदन की कला कहो, ज्ञान की कला कहो, मोक्ष की कला कहो, एक ही बात है। क्योंकि मोक्ष से विपरीत जो भाव बंध है, जो भाव रूप है, वो तो इतना ही है कि ज्ञान का स्वयं को छोड़कर अन्य भाव में या अन्य पदार्थ में प्रतिबद्ध होना, उसी को ही भाव बंध कहते हैं। जब ज्ञान ज्ञान को वेदता है और स्वय रूप से वेदता है, तब वो अन्य भाव और अन्य पदार्थ से प्रतिबद्ध नहीं हुआ है, इसलिए वहां मोक्ष मुक्त भाव चलता है। ये मुक्त भाव है, इसमें एक बड़ी मस्ती है। जैसे बंधन में पराधीनता है, वैसे ही बंधन छूट जाने पर इस मुक्त भाव का जो अनुभव है, उसमें भी एक बड़ी मस्ती होती है। वो ऐसी है कि सारे विश्व में अनंत पदार्थ हैं, और जो भी कुछ है, मैं सदा सर्वदा सबों से भिन्न हूँ, सर्वथा भिन्न हूँ और सर्वदा भिन्न हूँ, ऐसा मैं मेरा स्वरूप का वर्तमान में ही अनुभव कर रहा हूँ। आगे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे आत्मानुभव की कला है, वही सच्ची कला है। कला है, उसको अपन टेक्निक कहते हैं। कि विश्व में अनेक विभिन्न प्रकार के विषयों के विषय में जो भी निपुणपणा है, जो भी एक्सपर्टनेस आती है, इसको कला कही जाती है, उसको टेक्निशियन कहा जाता है। लेकिन ये जो सब प्रकार की सीखी हुई कला है, उससे भवबंधन का निवेड़ा नहीं आता, उसमें जन्म मरण और परिभ्रमण का निवेड़ा नहीं आता है। क्योंकि एक ही कला ऐसी है कि जिसमें जन्म मरण छुपता है, इसलिए यही सच्ची कला है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कार्य है, इसको सत्य धर्म कहते हैं। इसका वारंवार अभ्यास करना चाहिए, और ये वारंवार अभ्यास करने लायक है। जिसको दुख से छूटना हो, आकुलता से जिसको छूटना हो और सुखी होना हो, आत्मिक सुख प्राप्त करना हो, उसे तो प्रभाव से भिन्न होकर अपने आत्मा को जानकर मैंने अनुभव में लेकर उसका ही अभ्यास करने लायक है। ये जो है अपना प्रस्तुत विषय के साथ उसका संदर्भ है, वो बिल्कुल मिलता है यहाँ। तो कहते हैं कि सर्व प्रकार के भावों में वेदन से आस्वाद से ये अनुभूति है, सोई मैं हूँ। ज्ञान का निर्विकल्प अनुभव है, निर्विकल्प उपयोग होवे ये दूसरी बात है, लेकिन सामान्य ज्ञान है वो स्वरूप से ही निर्विकल्प है। विशेष ज्ञान है वो परिणमन में साकार रूप, भेद रूप, विकल्प रूप है। और ज्ञान सामान्य है वो निर्विकल्प रूप है। वो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करके मैंने उसको उभर करके उसका वेदन में स्वयंपण से उसको वेदन में लेना, ऐसा आत्मज्ञान से इस प्रकार के ज्ञान से इतना ही नहीं इस प्रकार के आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ सिद्धांत यहाँ स्पष्ट रूप से ये लिया है कि ज्ञान से सिद्धांत प्राप्त होता है। एक चर्चा चली थी आगे अपने समाज में, ये चर्चा चली थी कि सिद्धांत से ज्ञान होता है या ज्ञान से सिद्धांत होता है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में से एक ऐसा मुद्दा उठाया गया था कि देखो यहाँ कहते हैं सिद्धांत से ज्ञान होता है, ऐसे निमित नैमित्तिक संबंध देख के आरोप तो हर तरह के किए जाते हैं, लेकिन कारण कार्य के विषय में और सिद्धांत के प्राप्त होने के विषय में ज्ञान पूर्वक ही सिद्धांत होता है, कभी सिद्धांत पूर्वक ज्ञान होता है ऐसा कभी नहीं होता। आचार्य महाराज ने तो इधर ही टीका में कह दिया है कि ज्ञान पूर्वक सिद्धांत इसलिए नहीं होता है कि जैसे गधे के सींग है ही नहीं तो जाने बिने का जाना जानने पहले का जो सिद्धांत है वो गधे के सींग के सिद्धांत वैसा सिद्धांत है ऐसा करके लिया है। मैंने धर्म के जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम में भले ही सम्यक दर्शन का पद पहले लिया है क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धा प्रधान परिणति है और श्रद्धान पहले पूर्ण होता है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है फिर भी श्रद्धान पहले पूर्ण हो जाता है, इसका विषय भी पूर्ण और इनका परिणमन भी पूर्ण है, इसलिए वहां श्रद्धान का गुण स्थान कहा है, लेकिन इसका उत्पन्न होना ज्ञान पूर्वक है। यह तर्क भी संभव है कि सम्यक दर्शन में तो ज्ञान और श्रद्धान एक ही समय में पैदा होता है, जिस समय में सम्यक दर्शन का परिणमन है ठीक उसी समय में ज्ञान का परिणमन है, फिर आप उसको पहले बताने के क्यों जिद करते हो, क्यों आग्रह रखते हो, ऐसा भी प्रश्न संभव है। भले ही कथन क्रम से कहो, कभी इससे कहो कभी इससे कहो, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ज्ञान से श्रद्धान कहना क्यों, के जानना जानने से ही जानने के काल में ही जो चीज जानने में आई वो ऐसी ही है ऐसा प्रतीति भाव होता है। फिर से स्वसंवेदन में जो अपने आत्मा का अनुभव हुआ ज्ञान हुआ उसे आत्मज्ञान कहा, यहाँ उस आत्मज्ञान में जानने के काल में ऐसा ही हूं ये प्रतीति भाव का लक्षण है। भले ही ये प्रतीति भाव ऐसा विकल्प वाला न हो, क्योंकि प्रतीति हर हमेश सदा ही निर्विकल्प होती है, प्रतीति में विकल्प नहीं पैदा होता, लेकिन ये विकल्प से जिसको बताया जाता है कि ऐसी प्रतीति होती है, वेद से इसका विवरण किया जाता है, इसका जो वाच है इस वचन का जो वाच है वो वाच निर्विकल्प है, तो ऐसे अनुभव में आने पर अनुभव में प्रतीति पैदा होती है कि जो अनुभव में आ रहा है वैसा ही हूं। इस प्रकार की परिस्थिति अनुभव की परिस्थिति देखते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना वैसा ही है, ये प्रतीति का स्थिति की परिभाषा की है कि आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा ही हूँ, ऐसा निर्विकल्प भाव प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है, ऐसा प्रतीति भाव होता है जो स्वसंवेदन के काल में ही होता है, इससे पहले कभी किसी को होता नहीं। तो ये कहेंगे कि भले ही हमको निर्विकल्प उपयोग न हो, न हुआ हो, लेकिन हमारी श्रद्धा है वो सत्य श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऊपर से कोई देव आए, ऊपर से कोई अरे सिद्ध भी आ जाए, तर्क करने में क्या नुकसान है लगता है इसमें, लेकिन हमारी श्रद्धा टिकने वाली नहीं है। कहते कि ये बात जो है वो गलत है, श्रद्धा के विषय में कुछ गलत फहमी हुई है। ऐसी श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा अनुभव के बिना कभी किसी को चिंकाल में होती नहीं, ऐसा ही श्रद्धा का परिणाम है। और ये श्रद्धा है वो वज्र समान है। किसी परमागम में निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि का श्रद्धान की मुख्यता से बहुत से बात ली है। वहाँ सम्यक दृष्टि निशंक है, अपना अनुभव पूर्वक होने वाला श्रद्धान से वो निशंक है, इसलिए वो निर्भय है। और निर्भय है तो किस किस भय से रहित है, कि सप्त भय से रहित है। सप्त भय मैंने सर्व भय से रहित है, वो सप्त भय इतने बड़े बड़े लिए हैं कि दूसरे दूसरे जो भय है वो उसके पीटे पीटे पेट में आ ही जाते हैं। ऐसे श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। और ऐसा श्रद्धान जब उदित होता है तब समस्त अन्य भावों को, भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। देखो आचार्य महाराज ने यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के काल में आत्मा का आचरण, जिसको सम्यक आचरण कहे, सम्यक चारित्र कहें, जिसको स्वरूपाचरण कहें, ऐसा आचरण का मूल साध में लिया है। जहाँ धर्म होता है वहाँ तीनों परिणाम है, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र है। ये तो प्रधान गुण है, इसलिए उनके नाम दिए गए हैं धर्म की परिभाषा में। लेकिन जब धर्म होता है तो धर्म में धर्मी के सभी गुण के परिणाम आंशिक रूप से सिद्ध होके ही परिणमित होते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सर्व गुणांश सो सम्यकत्व। सम्यकपणा किसको कहवे, कि जो सर्व गुण से संपन्न हो, भले ही सर्व गुण पूरे शुद्ध परिणमित न हुआ हो, इसलिए सर्व गुणांश ऐसा छंद लिया है, बहुत शुद्ध परिभाषा है। सर्व गुणांश वो सम्यक्त्व है। इस सम्यक्त्व की अन्य सर्व गुण की प्रधानता से परिभाषा है। सम्यक्त्व की परिभाषा अन्य गुणों के आश्रित कही गई है। इसमें चारित्र गुण नहीं आता है तो बात तो रहती ही नहीं। फिर भी यहाँ थोड़ा प्रयोजन है तो कहते हैं कि भले ही चतुर्थ गुण स्थान अविरत का गुण स्थान है, क्या कहते हैं, अविरत गुण स्थान उसका नाम दिया गया है, क्योंकि वहां स्वरूप आचरण अतीव जघन्य रूप से पैदा होता है, बहुत जघन्यपणा है इसका। और इतना जघन्यपणा है के चारों गतियों में जो स्थिति में बाहे में जो जीव होता है वैसे के वैसा उसका लिबास रह जाता है, उसका दिखाव रह जाता है और भीतर में सारी आत्मा पलट जाती है। ऐसी अपनी पूरी आत्मा पलट गई जैसा ऐसा हो गया, फिर भी बाहर में उसका कोई पता नहीं चलता है कि उसको सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। एक विश्व की विचित्रता रही के लोगों को ऐसे सम्यक दृष्टि महात्मा को पहचान करने में दिक्कत रही, क्योंकि भीतर में उसका परिणमन बहुत अलौकिक रूप से बदल चुका है, फिर बाहर में कुछ भी बदला हो। बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता है और भीतर में विज्ञान घन परमात्मा का अंतर सुखरत घटा घटी के साथ ही उसका सुख में परिणमन का एक जो चरण है वो निर्धरने लगता है, एक परिणति का प्रवाह है जो बहने लगता है पर वो उसमें मस्त है। तो उसको फिर बाहर की दुनिया से जैसे संबंध ही नहीं हो वैसा हो जाता है। तो वहां आचरण जगन्य होने से, फिर भी आचरण है ही नहीं ऐसा नहीं होने से, यहां उसका उल्लेख किया है आचार्य महाराज ने कि जब ऐसा श्रद्धान ज्ञान पैदा होता है, उदित होता है, तब उसमें एक सामर्थ्य पैदा होती है, इस परिणमन में एक ताकत आती है कि जिस सामर्थ्य से वह अपना स्वरूप में निशंक होके स्थिर हो जाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के प्रारंभ के काल में ही असंख्य समय के लिए, कितने गिनती में आए इतने नहीं, हजार करोड़ लाख अरब समय के लिए नहीं, लेकिन इससे अधिक असंख्य समय के लिए वो स्थिर हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है, स्वरूप में स्थिर हो जाता है और इस स्थिरता में वो अपना स्वरूप का आनंद को प्रदेश प्रदेश से भोगता है। जो इंद्रिय का सुख और आनंद माना गया है, जो वाक्य में दुख है, वो तो एक द्वार से ही भोगने का अनुभव होता है। जैसे घ्राणेन्द्रिय का नासिका से सुगंध है लेते हैं, तो ये जो फूल है इधर लगाए जाए सुगंध नहीं आएगी, इधर लगाए जाए कुछ सुगंध नहीं आएगी, आंख से देखने में भी उसकी सुगंध नहीं आएगी, एक द्वार से उसका भोगना होता है। लेकिन ये आत्मानंद का जो भोगना है वो अतीन्द्रिय आनंद होने से सब इंद्रिय का व्यापार अस्त हो जाता है और ज्ञान का एक अतीन्द्रिय व्यापार पैदा हो जाता है। स्वसंवेदन भी एक इंद्रिय द्वार से वेदन में नहीं रहता, ये भी सब पूरे असंख्य प्रदेश से वेदन गोचर होता है और साथ ही इसमें आनंद का वेदन आता है। ऐसा आनंद को ज्ञानियों ने सिद्ध परमात्मा का जो परमानंद है उसका सैंपल कहा है। क्या कहा है? सैंपल कहने के पीछे ये आशय रहा कि ये क्वालिटी तो वही की वही है लेकिन क्वांटिटी में फर्क है, तो मात्रा है, अनुपात है, उसमें भेद है, लेकिन चीज तो वही है। जो सिद्ध परमात्मा अपनी आत्मा को परिपूर्ण रूप से आनंद से अनुभव करते हैं, उसी आत्मा को अपनी वर्तमान कैपेसिटी के अनुसार साधक धर्मात्मा भी उसका वेदन करता है। तो ये जो है ऐसा आनंद है वो अन्य भावों से वेद में ने छुट्टा होने पर, वेद में ने उसका संपर्क छूट जाने पर, निशंक स्थिर होने में, मैंने स्वरूप स्थिरता होने में, समर्थ में ने क्षमता धारण होती है, शक्ति आती है, वो ज्ञान श्रद्धान पूर्वक आती है। कभी बिना सम्यक श्रद्धान और बिना सम्यक ज्ञान स्वरूपस्थ होने की क्षमता किसी भी जीव में नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भले ही सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धान के विषय की हमको जानकारी न हो, हमके उस विषय में कुछ ना आता हो, भले ही इस विषय में हम अनभिज्ञ हो, लेकिन हमारा तो एक ही काम है कि स्वरूप में जम जाना, स्वरूप में आखिर में तो स्थिर होना है। तो हम तो यही प्रयत्न करते हैं, शुरू से यही कर रहे थे, इसका ही कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये जो है गाड़ी घोड़े में घोड़ा आगे लगाया जाता है, कभी पीछे नहीं लगाया जाता। कहाँ आगे घोड़ा लगता है ना, अगर पीछे लगाया जाए तो क्या हालत हो गए, क्या एक्सीडेंट हो गए। वैसे कोई स्वरूपस्थ होने में पहले स्वरूपस्थ होवे, भले ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान न हो, कभी ऐसा चिंकाल में हो ही नहीं सकता। जैसे ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं है, वैसे श्रद्धान ज्ञान के बिना आचरण का उदित होना संभवित नहीं है, कभी ये होता ही नहीं, ऐसा भी यहाँ संकेत मिलता है। ऐसे आत्मा का आचरण उदय होता हुआ, आत्मा को साधता है। देखो ये आत्मा की साधना है, ये आत्मा की आराधना है, ये आराधन के पर्व है ना, आराधन के दिन कहे हैं, यही आत्मा की आराधना है। ऐसा आराधन करने से, इस आराधना में पवित्र धर्म माना गया है। आराधन में तो ये ऐसा है नहीं है, इसने से ऐसा है, वो नहीं से ऐसा है, ऐसी कोई सिरफोड़ी भी नहीं है। ये माथा पचीसी तो वहां तक है कि जहां तक उसका निर्णय नहीं हो, वहां तक अन्वेषण के काल में ये सब भेद प्रभेद, इसमें से ऐसा हो, इस दृष्टिकोण से ऐसा स्वरूप हो, तत्व का इस दृष्टिकोण से ऐसा स्वरूप हो, इस अन्वेषण के काल में है, इसकी मर्यादा वहां खत्म होती है। नो आराहण समये ऐसा कहा है, ये नई चक्र की एक गाथा है, 266 नंबर की, 68 नंबर की है, नई चक्र, माइल धवल, आचार्य माइल धवल का एक ग्रंथ है बड़ा, उसमें ये गाथा है। नो आराहण समये, आराधना के समय कोई विचार विमर्श की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ कोई विकल्प उठता नहीं। मेरे विकल्प है वो तो आकुलता है, दुखदायक है, भले ही ये विकल्प आत्मा के लक्ष्य से आत्मा के आनुषंगिक हो, फिर भी इसमें आकुलता ही है, इसमें दुख ही है। और भेद ज्ञान करने वाला जीव इससे भी छुट्टा होकर, इसमें है ना अन्य भावों के भेद होने से, ये भी अन्य भाव है, हालांकि परिस्थिति ऐसी है कि वहां उच्च कोटि के शुभ भाव पैदा होते हैं। जो भेद ज्ञान चलता है और स्वरूपस्थ नहीं हुआ हो, उस काल में निश्चय नहीं के विशद विषयभूत जो परमात्म तत्व है, उसी के उसके लक्ष्य में, उसके उसको लक्ष्य में रख के, बिना लक्ष्य की बात नहीं है, लक्ष्य में रख कर छोटा सा तनिक सा अल्प रागांश पैदा होता है, बहुत कषाय की मंदता वाला है, और उच्च कोटि का है, फिर भी वहाँ साधक वो उसको दुख रूप अनुभव करता है, दुख रूप है इसलिए दुख रूप अनुभव करता है, और तभी वो वहां से सहज रूप से हटकर अपने निर्विकल्प अनुभव में स्थिर हो जाता है। वरना सहज रूप से हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर उसका दुख रूप अनुभव होता नहीं तो। इसलिए कहते हैं कि वहां आत्मा की साधना हुई, परमात्मा की साधना वहां हुई, परम तत्व की ये साधना है, परम तत्व की आराधना है। ऐसे साध्य जो आत्मा, उसकी जो सिद्धि है, साध्य जो आत्मा, आराध्य जो आत्मा, उसकी जो सिद्धि है, सिद्धि मैंने प्राप्ति है, वो इस प्रकार से उत्पन्न होती है, इस प्रकार इसकी उपपत्ति है, उपपत्ति मैंने उत्पन्न होना है, अन्य किसी भी प्रकार से इसकी उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा आगे कहेंगे। दूसरे पैराग्राफ में ये बात लिया है कि अन्यथा अनुपपत्ति है, ऐसा करके ये बात को सिद्ध करना है। इसमें भी आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बात ली है और इस कथन पद्धति की कोई सुंदरता है, कोई अच्छापना है, तो वो है कि उसमें बहुत आसानी से ये काम कैसे हासिल होता है, ऐसी एक पद्धति जो है कथन में वो प्रसिद्ध कर दी है। जैसे सोते सोते कोई करवट बदलता है तो कितने आसानी से वो बदलता है, तो उसमें न उसको बैठना पड़ता है, न खड़ा होना पड़ता है, न कोई अन्य परिश्रम होता है। वैसे नींद में भी वो करवट तो बदल सकता है, वो जितना आसान है इससे भी कोई अधिक आसान है, ऐसा करके इस बात को लिया है। मैंने सहजता कितनी है इस लाइन में आने की, इस विषय का सुंदर निरूपण जो है वो सारे ग्रंथ में, इसी ग्रंथ में, इस परमागम में भी सारे ग्रंथ में यहाँ पर दिया है। कहते हैं आगे, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, कहना तो ये है कि ऐसे अनुपपत्ति कैसे हो, ये कहना है, लेकिन नास्ति के विषय को निरूपण करते पहले वो अस्ति को एस्टाब्लिश करते हैं, स्थापते हैं। क्या शैली है कि अस्ति के और अनुभव की अस्ति के विषय को अच्छी तरह प्रतिष्ठित करके, स्थापित करके, फिर नास्ति के विषय को बताते हैं। क्या कहते हैं कि देखो, भले ही तुमने अभी तक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन भले ही पैदा न किया हो, लेकिन हम तुमको एक आसान कार्य पद्धति यहाँ दिखाएंगे। ये कार्य पद्धति का विधि का विषय चलता है। तो कहते हैं कि ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल छोटे मोटे सभी जीवों को, आबाल गोपाल में सभी जीवों को लेना है, सबके अनुभव में कब आता है कि सदा ही आता है। ये कोई नई बात दिखती है कि हमको तो आत्मा का अनुभव नहीं है, पर आप आचार्य महाराज कहते हैं कि आपको तो सदा ही अनुभव में आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात कैसे सत्य है। किसी भी अनुभवी के, ज्ञानी के, धर्मात्मा के, आचार्य के वचन भले ही सीधे ख्याल में नहीं बैठे, तो इसकी गहराई में जाना जरूरी है। अपनी बुद्धि में सीधे बुद्धि गोचर नहीं हो तो उसका जो है निषेध नहीं आना चाहिए, फिर अधिक यहाँ प्रयत्न करना आवश्यक है, ऐसा सोच समझकर इसकी गहराई में जाना चाहिए। तो हमें पहले ऊपर ऊपर से तो ये दिखेगा कि आगा आबाल गोपाल को अगर जो आत्मा अनुभव में सदाई आ रही है तो ये बात तो बिल्कुल हमारे अनुभव से कमी बैठती है। और फिर दुनिया में बहुत से सभी अज्ञानी हैं, ज्ञानी तो बहुत कम है, ये भेद भी कैसे छटा जाएगा, ये बात भी कैसे सिद्ध होगी जब तो सभी ज्ञानी हो गए। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क यहाँ संभवित है, लेकिन यहाँ कहने का आशय क्या है, किस रहस्य का उद्घाटन करना है, यहाँ इतनी ही कौतूहल जो है, इतनी ही जानने की आकांक्षा है, वो यहाँ होनी जरूरी है। कि कहते हैं कि हूँ हूँ मैं ऐसा मैं पढ़ा वो हरा हर जीव को, सभी जीव को, छोटे मोटे सब जीव को अनुभव में आता ही है। और अनुभव जो ज्ञान में है और ज्ञान की प्रधानता से इसका विचार किया जाए तो ज्ञान की पर्याय में सामान्य और विशेष ऐसा दो प्रकार पड़ता है। ज्ञान पर्याय में ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष ऐसा दो प्रकार चलता है। कैसे कि जो ज्ञाकार ज्ञान है, जो अन्य अन्य ज्ञेयों के का आकार को प्रदर्शित करता है, ऐसा जो ज्ञानाकार जो है ज्ञान में वो विशेष ज्ञान है। और जिसमें कोई ज्ञानाकार नहीं है ऐसा एक सामान्य ज्ञान का जो पर्याय रूप में उपस्थित पड़ा है उसको ज्ञान सामान्य कहते हैं। आप ये कहोगे कि ऐसा तो ज्ञान सामान्य हमारे दिखने में नहीं आता, कि अनेक अनेक पदार्थ को जानने वाला ज्ञान का तो हमारी समझ में बराबर अनुभव आता है, लेकिन ये क्या नई चीज है। तो जब इसको ज्ञान विशेष कहे तो बिल्कुल गणित के अंक जैसे सिद्ध होने वाली चीज है कि अगर ऐसे ज्ञानाकारों को ज्ञान विशेष कहे तब बिना कहे ही ज्ञान सामान्य की सिद्धि हो ही जाती है, क्योंकि विशेष कभी बिना सामान्य रहता नहीं। यानी विशेष कहा इसका मतलब यही हुआ कि सामान्य है तो विशेष है, वरना विशेष किसका। ये अंगुली छोटी या बड़ी, ये तीन अंगुली है, इसमें जो बीच में है वो बड़ी है या छोटी है, तो वो तो जितनी है इतनी है, ये असल इनका रूप है। लेकिन बड़ी है तो इसका संपर्क हो गया छोटी वाली का, पर छोटी है तो बड़ी वाली से संपर्क हो गया। छोटी बड़ी कहने में ही दूसरी अपेक्षा आई जाती है, वैसे ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य सही चीज होता है। दर्पण के पर्याय से भी इसका बराबर सिद्धि होती है कि रास्ते पे एक बड़ा दर्पण लगाया जाए और उसमें हजार ट्रैफिक जो भी जितना भी चलता हो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, क्या इनकी जो सामान्य पर्याय है उसमें कोई हानि होती है क्या। अनेक आकार उसमें झलकते हैं दर्पण में, पर इनकी जो बिना आकार वाली शुरू की जो अवस्था थी, जो पहले वहां नहीं रखा गया था, वो तो वैसे की वैसी सामान्य रूप से है ही। ऐसा भी कभी नहीं होता कि बहुत विशेष ज्ञाकार होने से ज्ञान सामान्य को कभी हानि पहुंची हो, कभी उसको आघात हुआ हो, प्रत्याघात हुआ हो, कभी उसमें क्षति आई हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसका जो अनुभव है वो भी सभी जीव को भीतर में चालू है, है तो सही। पहले तो इनकी अस्थि समझे, अगर है तो वो वेदन रूप है कि बिना वेदन रूप है, कि ज्ञान है वो बिना वेदन रहता नहीं। वेदन वेदक का इसका धर्म है, इसका स्वरूप है, वो अपना स्वरूप को कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो वेदन सहित तो वो रहता ही है और वेदन में भी आता ही रहता है, लेकिन जैसा आचार्य महाराज ने कहा कि अनादि बंध के वश पर तेरा ध्यान नहीं, सदमस्त जीव की ये हालत है कि जहां इसका ध्यान है, जहां इसका लक्ष्य है, उसको विषय करता रहता है, उसको वेदता रहता है मुख्यतया, और अन्य अन्य बातें ज्ञान में आई हुई हो, आती होती हो और वेदाती जाती हो, फिर भी वो कौन हो जाती है, नहीं के बराबर हो ही जाती है। ऐसा इनका परिणवन हर हमेशा चालू रहता है सभी सदमतों को। बाह्य में भी ये परिस्थिति है ही, जैसे सुनते सुनते उपयोग अन्य जगह गया, दुकान पे लग जाता है, कभी घर पे लग जाता है, कभी लग जाता है, क्यों हो जाता है ऐसा, चाहते तो नहीं है कि यहाँ का ध्येय बना रखा है, क्यों हो जाता है। मंदिर में आके शास्त्र पढ़ के वहां उपयोग जाने का क्या कारण बनता है कि वहां ध्येय पड़ा है। अगर ध्येय बदल गया, मोक्षार्थी हो गया, जैसे आचार्य महाराज ने गाथा में फरमाया, तो दुकान की ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के भी मंदिर या शास्त्र और अपनी आत्मा का विकल्प आएगा, उसकी स्मृति आएगी, प्लेटफॉर्म बदल जाएगा पूरा का पूरा। जैसे यहाँ वो याद आता है, वहां ये याद आने लगेगा, अगर जो रास्ता बदल गया है। तो जब इस वक्त विकल्प जाता है अन्य स्थान में, तो कान पे तो कोई ढक्कन नहीं है तो इस पर इस वक्त बंद हो गया हो, चक्षु को तो है, चक्षु बंद हो जाती है, ढक्कन से तो दिखना नहीं होता है, लेकिन कान तो कभी बंद होता ही नहीं, फिर भी वो बात वहां नहीं सुनी ऐसा कहने में आया है। उपयोग वो धर्म है ऐसा कहते हैं, वहां उपयोग नहीं था उसका, उपयोग और जगह चला गया, सावधानी और जगह हो गई, तो यहाँ की जो बात सामने है और ज्ञान के पर्दे पर इसका प्रतिबिंब आता है, फिर भी वो नहीं के बराबर हो जाता है। ऐसे अनादि बंध के वश जीव को जो राग में बंधन है, राग से एकत्व बंधन है, इस बंधन के वश वो इतना होकर चलता है, परिणमता है कि उसको अपना ज्ञान संवेदन है कि नहीं, इसका पता नहीं है। अरे पता तो है ही नहीं, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि तुझे है, तू देख तो देखने को जाता है तो उसको देखने में नहीं आता है, क्या हालत होगी है। उसको ये कहेंगे कि तुझे ज्ञान वेदन है, अब तर्क से, न्याय से, युक्ति से तो उसको ना नहीं दे सकते, क्योंकि ज्ञान विशेष है तो ज्ञान सामान्य है, और ज्ञान का तो वेदन रूप धर्म है, उसको वेदन छुड़ाया जाए तो भी छूट नहीं सकता। अगर कोई छोड़ने को सोचे और कोई प्रयत्न विशेष करे तो संभव नहीं है कि ज्ञान में से ज्ञान वेदन को छुड़ाया जा सके। ऐसा होने पर भी वो भीतर में तलाश करता है कि आचार्य महाराज ने ये कहा कि तुझे तो ये ज्ञान वेदन है, ज्ञान वेदन ही आत्मा इतर कहा है, यहाँ ज्ञान वेदन को पर्याय नहीं कहा, ये सामान्य ज्ञान, सामान्य स्वभाव सदृश होने से और ये सामान्य ज्ञान में स्वभाव प्रकट होने से, व्यक्त होने से, व्यापक होने से, साकार अनुभव गोचर होने से उसी को ही आत्मा कहा है। यहां तो उसी को आत्मा कह दिया है, कोई आत्मा है। अगर तू उसको वेदे, उसको उभर करके उसको वेदे, तो तुझे संवेदन होगा, जिसको हम आत्मज्ञान कहेंगे, जिसको हम आत्मानुभव कहेंगे। लेकिन ये वेदन है वो छिपा हुआ है, ढका हुआ है, आच्छादित हुआ हुआ है। जैसे धुएं में अग्नि नहीं दिखे, इतना धुआं बढ़ जाए तो अग्नि नहीं दिखे। कभी संभव है कि बिना अग्नि धुआं पैदा? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है ही है। धुआं ही धुआं की प्रसिद्धि नहीं करता, धुआं अग्नि की प्रसिद्धि करता। ऐसे ज्ञान विशेष, ज्ञान सामान्य को है, इसका वेदन भी है। लेकिन इस वेदन को आविर्भूत करने की कला है, इसकी एक कार्य पद्धति है। उस कार्य पद्धति में वो नहीं आया है, उसको वेद ज्ञान की पद्धति से उसको आविर्भूत करना चाहिए। और जो है उसका आविर्भूत करना करने की बात है, नहीं है उसके आविर्भूत करने की बात नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि उसमें करना धरना नहीं है, ये तो है ही। क्या है कि भगवान आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है। अनुभव में लाना, इतना करना, ये भी एक कहने की चीज है। वो तो आ ही रहा है, तेरा ध्यान नहीं है, तेरा ध्यान और जगह है। और तुझे ये भ्रांति हो गई है कि मेरी आत्मा कैसी है, मैं क्या हूं, मैं कैसे उसको अनुभव करूं। इस प्रकार से इस बात को बहुत कठिन समझ ली गई है, बहुत दुष्कर समझ ली गई है। आचार्य महाराज कहते हैं कि करवट से भी आसान है। करवट में तो इतना ही घूमना पड़ता है, और उसमें भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। ये फिजिकल साइंस की बात रही, समय भी नहीं है अब तो इतना। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, है इसको देखना है बस। जो वेदन है उसको देखे, बस खत्म हो गई। लक्ष्य फिरता है, परिणति दूसरा स्वरूप पकड़ती है, दूसरा वेग पकड़ती है, और सारा का सारा जो परिणमन है वो एक दूसरे स्वरूप में उभर के बाहर आता है। और ऐसे ही एक धर्म है, वो कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है, एक आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। वो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी तरह यहाँ स्थापित किया।